हाँ जी
हाँ जी बांदेरी माता कैसे कैसी माता को बांदेरी कहा जाता है और बांदेरी माता किस तक माना कैसे पुरुषा को करे कब भी बाबा से मिल पाती है।
बांदेली माता उसे कहा जाता है खास करके क्योंकि अभी तो भारतवर्ष में सब स्वतंत्र हैं कि किसी को कोई बांध के रख सकता है, है? स्वतंत्र हैं या बांध के कोई रख सकता है किसी को, है? सब स्वतंत्र हैं। हाँ, एक शादी के कार्यक्रमों को सरकार भी मानती है कि शादी होने के बाद जब तक तलाक न हो तब तक पत्नी पति के अंडर में ही रहेगी। क्यों? क्योंकि स्त्री चोला प्रबल है या पुरुष चोला प्रबल होता है, है? पुरुष चोला प्रबल होता है, मन से भी बुद्धि से भी इंद्रियों से भी। इसलिए जो अबला है कलयुग में सभी अबलाएं बन जाती हैं, कन्याएं माताएं, उनको कोई न कोई पुरुष का आधार लेना पड़ता है। तो शादी की परंपरा के अनुसार जिन कन्याओं माताओं को पुरुष का आधार लेना पड़ता है उनके अंडर में चलना भी पड़ता है। कोई कोई पुरुष बहुत समझदार होते हैं तो भारत की संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसमें छूट देते हैं। मौलिक अधिकार है कि अपने अपने धर्म पर चलने की सभी को स्वतंत्रता है। कोई पति जबरदस्ती करते हैं नहीं, हम जिस रास्ते पर चलेंगे उसी पर तुमको चलना पड़ेगा, हम जिस धर्म को मानेंगे उसी धर्म को तुम्हें मानना पड़ेगा। तो वो बिचारी कन्याएं माताएं बांधेली बन जाती है क्योंकि शादी के बंधन में फंसी हुई है। तलाक देने के लिए वकील करना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, इतना बल नहीं है। पैसे की ताकत भी मनुष्यों के पुरुषों की जेब मुट्ठी में रहती है और समाज की ताकत भी ज्यादातर पुरुषों में ही रहती है। तो बेचारी हेल्पलेस हो जाती है, उनको बांधेली कहा जाता है, समझा? या उनको बांधेली कहा जाता है कि खुदा न खास्ता पति ने शरीर छोड़ दिया या पति विदेश में चला गया सदा काल के लिए छोड़ छाड़ के। बच्चों के हाथ में सारे परिवार की बागडोर आ गई तो जो परंपरा पड़ी हुई है भक्ति मार्ग में कि कृष्ण बच्चा गीता माता का क्या बन के बैठ जाता है, पति बन के बैठ जाता है, गीता पति भगवान बन के बैठ जाता है। जो जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो ही माताओं का पति बन करके बैठ जाता है। तो आज सारी दुनिया में माताओं और बच्चों के बीच में क्या हालत हो गई है, कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो माताओं के क्या बन के बैठ गए है, सरपरस्त बन के बैठ गए, उनको अपनी मुट्ठी में लेकर बैठ जाते हैं बालिग होने के बाद। अगर वो बच्चे नाबालिग हैं, पति ने शरीर छोड़ दिया या छोड़ के चला गया, तो माता के हाथ में सत्ता है, चाहे जैसे चले, फिर उसे बांधेल ही नहीं कहा जाएगा। तो पति के कंट्रोल में है तो भी बांधेली, और बालिग बच्चों के कंट्रोल में आ गई तो भी बांधेली, बाकी किस बात की बांधेली है? हाँ, घर की मालिक है माता, गवर्नमेंट भी सहयोगी बनेगी।
ऐसी माता ने कैसे पुठाते करने से बाबा की ऐसी बांधेली माता ने जो पति ने शरीर छोड़ दिया तो घर संभालना पड़ता है उस माता के,
तो अपनी अथॉरिटी से घर संभाले जैसे पति संभालता था।
तो ऐसी माता है,
कैसी माता
जो ऐसी बांधेली जो पति नहीं है?
हाँ, पति नहीं है, बच्चा बड़ा नहीं है, जैसे पति पुरुषार्थ कर सकता है। पति स्वतंत्र होता है, घर का मालिक होता है, घर का मुखिया होता है, तो वो कैसे पुरुषार्थ करता है? किसी के अधीन होकर पुरुषार्थ करता है परिवार में, तो ऐसे ही पुरुषार्थ करे।
बाबा से मिलना चाहती है।
कौन? आप किसे बांधेली कहते हैं? आपको बता दीजिए बांधेली कौन होती है?
बच्चा की बांधेली हो रही, पति।
बच्चा बड़ा है, बालिग है, तब बांधेली है, या बच्चा छोटा है तब बांधेली है?
बच्चा छोटा छोटा है
तो बांधेली है। वाह भाई, हाँ
बाबा, ये जैसे बाप ने मुर्गी में कहा कि तुम बच्चे बाप को, स्त्री बाप को याद करो, आखिर में तुम्हारे परिवार सब एक एक करके बाबा के आएंगे, बोले पक्ष से आएंगे सब।
जब
पक्ष से आने के लिए शुरू करेंगे,
कब से आने के शुरू करेंगे? जब से राजधानी बनना शुरू होगी तब से आ जाना शुरू करेंगे।
उनके लिए भक्ति करने का डर नहीं है?
राजधानी बनेगी तो 4.5 लाख की राजधानी बनेगी ना, नहीं उसमें प्रजा नहीं होगी है? राज्य अधिकारी नहीं होंगे, राजा रानी नहीं होंगे, दास दासी नहीं होंगे, तो वो 4.5 लाख अभी निकल आए आगे, तो फिर काहे के लिए फाफा मारे? बाबा ने कहा है तो विश्वास रखना चाहिए ना, कि बाबा के बोले हुए महावाक्य हैं कि तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। विश्वास नहीं है तो बार बार पूछते हैं गोवा पे लागे। हाँ
बाबा, उस सीढ़ी का चित्र जो है,
हाथ उठाओ। हाँ हाँ,
वो सीढ़ी चढ़ने के लिए,
हाँ
चढ़ने के लिए, तो वो सीढ़ी नहीं है,
तुमने देखा ही नहीं इधर, ये क्या जा रहा है सांप की तरह ऊपर, ये क्या जा रहा है? वो बताती है सीढ़ी के कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, सुख भोगते हैं, चाहे कोई भी कर्मेंद्रिय हो, जैसे देवताएं आंखों से सुख भोगते हैं, राधा कृष्ण के दृष्टि लेती है, कृष्ण राधा की दृष्टि लेती है, तो दृष्टि का सुख जैसे देवताएं भोगते हैं, तो सूक्ष्म इंद्रियों से सुख भोगते हैं, द्वापर युग से स्थूल इंद्रियों से भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगते हैं, भोगते हैं कि नहीं? तो जब इंद्रियों से सुख भोगते हैं तो नीचे उतरते हैं, और बुद्धियों का सुख जब भोगते हैं, कौन सा सुख? वाइब्रेशन का, बुद्ध योग का, उसका रिजल्ट क्या बताया? बुद्ध योग के सुख का रिजल्ट क्या बताया? अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। एक बार आरंभ हो जाएगा तो 2500 वर्ष तक ज्यों का त्यों चलेगा, सुखी ही सुख रहेगा। तो ऊपर चढ़ने वाली बात ही नहीं दिखाई देती है।
इसकी नहीं सकते।
अरे ये 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 जो लाइन दिखाई है तुम्हें दिखाई नहीं, यहाँ के बैठो। तो फिर बुद्धियों की रास्ता है। दुनिया के लोग जो हैं शरीर का योग सिखाते हैं, प्राणायाम सड़ा के बैठो, उल्टे पलटे हो जाओ, शरीर का योग सिखाते हैं। और भगवान, भगवान मन बुद्धि रूपी आत्मा का योग सिखाएगा या देह का योग सिखाएगा? तो 84 जन्म ये इंद्रियों का सुख भोगते भोगते नीचे उतरते हैं, और भगवान आकर के जब बुद्धि योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, जिसे सहज राजयोग कहा जाता है, तब हम ऊपर चढ़ जाते हैं।
सेकंड में फोन कर।
हाँ जी। और
बाबा,
मैंने कोई किसी से कर्जा दिया था, कर्जा दिया था, कर्जा
उधार लिया,
लोन लिया,
लोन लिया,
लोन लिया था।
क्या
मुझे है ना भाई, मैं कोई किसी से लोन लिया था,
कर्जा लिया था,
कोई से लोन लिया था,
और वो आदमी मर गए, उसे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं,
वो आदमी मर गया,
मर गया,
मर गया,
हाँ,
और उसे कोई भी नहीं है,
उसको कोई भी नहीं है,
कोई भी नहीं है,
हाँ,
वो कर्जा तो हम देने ही नहीं पाया, क्या करेगा?
क्या नहीं पर कर पाया? हाँ, सब लोग नहीं बोलिए,
कर्जा चुका नहीं पाया, उसका सब आदमी मर गया, उसके जो लोन लिए थे कर्जा चुका नहीं पाया।
अच्छा, जिनका कर्जा लिया था वो मर गए और वो कर्जा नहीं चुका पाया,
नहीं चुका पाया, उसके लिए क्या करना है?
अगले जन्म में कर्जा चुकाएगा। अरे आत्मा है कि वो शरीर है? शरीर मर गया कि आत्मा मर गई? तो आत्मा तो जन्म लेगी कि नहीं? तो अगले जन्म में कर्जा चुकाएगी।
हाँ, और उपाय तो नहीं है, और उपाय उतनी उपाय और
दूसरा
उपाय नहीं
है,
दूसरा कोई उपाय है?
दूसरा कोई उपाय है? हाँ है, है? भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो कहते हैं मैं तुमको बिल्कुल मुक्त कर दूंगा, कि सती को कर्जा चुकाएंगे, है ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसके बाद अगला जन्म इस मृत्युलोक में नहीं मिलेगा। तो कर्जा चुकतु होगा या नहीं होगा? कर्जा चुकतु होगा तब स्वर्ग में जाएंगे, या कर्जा चुकतु नहीं होगा तो भी चले जाएंगे? है? कर्जा चुकतु होगा, कैसे चुकतु होगा? ऐसे चुकतु होगा कि तुम अपना तन मन धन समय संपर्क सब ईश्वरीय सेवा में स्वाहा कर दो, तो मैं तुम्हें हर प्रकार से मुक्त कर दूंगा। कर्जा चुकते हो गया?
बाबा, महाभारत महाभारी युद्ध, हिंदू और मुसलमान का युद्ध लक्ष्मी नारायण के प्रत्यक्ष होने का बात होता है।
महाभारी महाभारत युद्ध है,
हिंदू और मुसलमान का युद्ध है, लक्ष्मी नारायण के प्रत्यक्ष होने के बाद होता है या 17-18 मिनट होता है?
लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता होना माना शिव बाबा की प्रत्यक्षता होना, और शिव बाबा की प्रत्यक्षता हुई, इसका मतलब ये हुआ की राजधानी स्थापन हुई और राजधानी स्थापन होगी तो जितनी जितनी राजधानी स्थापन होगी उतना उतना विनाश भी शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? एक तरफ हाहाकार बढ़ता जाएगा और दूसरी तरफ जय जयकार बढ़ती जाएगी। तो ये स्थापना और विनाश दोनों साथ साथ होगा। और हाँ जी,
मुस्लिम,
हाथ उठाओ। हाँ,
ये मुस्लिम मस्जिद में औरतें नहीं घुस पाती, इसका क्या आध्यात्मिक रहस्य है क्या?
क्यों नहीं है? मस्जिद में सन्यासी अपन को ऊंचे समझते हैं कि नीचे समझते हैं? है ऊंच समझते हैं। ये सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग के हैं या निवृत्ति मार्ग के हैं? निवृत्ति मार्ग के हैं। तो जो इब्राहिम आया, बुद्ध आया, क्राइस्ट आया, शंकराचार्य आए, मोहम्मद आए या जितने भी धर्म पिताएं आए, ये प्रवृत्ति मार्ग के पक्के थे या कच्चे थे? कच्चे थे। और इनके फॉलोअर्स भी कच्चे हैं। एक छोड़, दूसरा, दूसरा छोड़, तीसरा, तीसरा छोड़, पांचवा, अपनाते ही रहते हैं। ये सन्यासियों की खास प्रवृत्ति है, इनके अंदर संस्कार भरे हुए हैं कि नारी को नरक का द्वार समझते हैं। क्या? इसलिए अगर वो मस्जिद में आके बैठेगी तो हम फिर नरक में घुस जाएंगे, हमको संग का रंग लग जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए मस्जिद में जाके बैठते हैं कि कहीं हमको नरक में फिर से न चले जाए दो जगह में। ये सब धर्म वाले सन्यासी हैं, सब प्रवृत्ति मार्ग के कच्चे हैं। एक भगवान आता है इस सृष्टि पर जो पक्का प्रवृत्ति मार्ग अपनाता है, एक के साथ नहीं, हद की प्रवृत्ति नहीं, बेहद की प्रवृत्ति अपनाता है और एक को भी लात मार के बाहर नहीं करता। भगवान किसी को धक्का देके भगाता है? बच्चे अपने आप भाग जाते हैं या भगवान बाप उनको भगाता है? बच्चे अपने आप भाग जाते हैं, वो दूसरी बात। तो एक भगवान ही है इस सृष्टि पर जो 4.5 लाख सूर्यवंशियों को पक्का पक्का प्रवृत्ति मार्ग वाला बनाता है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता है। और
रावण ने नेपाल की नई दुनिया की पालना करने वाला बताया
है।
नेपाल नई दुनिया की पालना करने वाला बताया है।
हद का है या बेहद का?
आज देख रहा है।
हद का है या बेहद का नेपाल?
बेहद। लेकिन
देखी,
आज हम देखा जा रहा है कि नेपाल बहुत ज्यादा विदेशी से प्रभावित हो रहे है, तो इसकी बेहद में कैसे
सुधार? देखो, पहले पहले नीचे गिरने वाला बेहद के नेपाल के बच्चे हैं या हद के नेपाल के बच्चे हैं, और पहले पहले ऊंचे उठने वाले बेहद के नेपाल के बच्चे हैं या हद के नेपाल के बच्चे हैं? है? हाँ, बेहद के। बेहद के मतलब बेहद बाप के बच्चे। बेहद का बाप है शिव बाप, और उसके जो बेहद के बच्चे रुद्रमाला कही जाती है 4.5 लाख, वो बेहद में नीचे गिरते हैं। और नीचे कब गिरते हैं, कब गिरते हैं, विदेशियों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, है? विदेशियों को फॉलो करते हैं। वो बच्चे संगम युग में कभी लक्ष्मी नारायण को फॉलो करने वाले थे, 21 जन्म तक एक को साथ रखने वाले थे। क्या राधा कृष्ण 21 जन्म तक साथ रहेंगे, उनके फॉलो करने वाले भी 21 जन्म तक साथ रहेंगे या थोड़े जन्म साथ रहेंगे? हद का बाप एक जन्म की शादी कराता है और बेहद का बाप है 21 जन्म के बंधन में बांधता है। उसमें व्यभिचारी बनने का कोई 21 जन्म तक सवाल ही नहीं। तो अंतर पता चला, जो पक्के पक्के शिव बाबा के बच्चे हैं, आत्मा बनने वाले, अपने को आत्मिक स्वरूप में स्थिर करने वाले, वो पक्के पक्के प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। इसके अलावा जो भी हैं, चंद्रवंशी हैं, सब नहीं, क्योंकि चंद्रवंशियों में भी कोई कोई होते हैं जो कन्वर्ट होकर के सूर्यवंशी बन जाते हैं, जैसे जैसे लक्ष्मी। तो 90% ब्रह्मा की गोद में खेलने वाले और धर्म के बच्चे, वो और धर्म वाले श्रीमत को ज्यादा उठाते हैं, या भगवान के जो बच्चे हैं वो श्रीमत को ज्यादा उठाते हैं, हैं? भगवान के बच्चे श्रीमत को ज्यादा उठाते हैं। तो जो श्रीमत को ज्यादा उठाएंगे वो पहले सातों प्रधान बनेंगे, या जो कम उठाएंगे श्रीमत को वो पहले सातों प्रधान बनेंगे, और वो ही पहले तमो प्रधान भी बनते हैं। कैसे बने? जब इस्लामी आए तो जो देवता धर्म की आत्माएं थी पक्की पक्की 100% देवता 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, उन्होंने इस्लामियों को फॉलो करना शुरू कर दिया। इस्लामियों में यह नियम था कि 4-4 शादियां भी करते थे, अभी भी करते हैं। इन्होंने क्या किया उनको देखकर, इन्होंने कहा हम भी अनेक शादियां करते हैं, वो 4 करते हैं तो हम 40 तो क्या 400 रखेंगे, तो ज्यादा पतित कौन हुए? भारत के राजाएं ज्यादा पतित हुए जो रुद्रमाला के मणके हैं, बाप के पहलौटी के बच्चे हैं, वो पहले पतित हुए या दुनिया वाले ज्यादा पतित होते हैं? है? पहले ये ज्यादा पतित हुए। तो जो पहले पतित हुए हैं वो पहले पावन बनते हैं, और पहले पहले यूनिटी बनाते हैं। क्या? नई दुनिया की क्या बनाते हैं? यूनिटी बनाते हैं, नया संगठन बनाते हैं, नाम देते हैं एनएस। तो जो नया संगठन नई दुनिया की पहले पहले फाउंडेशन डालते हैं वो हुए बेहद के नेपाली। वो बेहद के जो जन्म जन्मांतर के राजाएं बनने वाली आत्माएं हैं, वो पहले ज्यादा पतित भी बनती हैं, डिसयूनिटी भी करते हैं आपस में लड़ाई लड़के, और वो ही पहले पहले नई दुनिया की पालना भी करते हैं। तो बेहद के नेपाली नई दुनिया की पालना करने वाले बेहद के नेपाली हुए। और फिर दूसरे नंबर में नेपाली वो जो दुनिया में देखे जाते हैं भक्ति मार्ग वाले की तरह। भक्ति मार्ग वाला जो शंकर जी है वो पहाड़ पर रहता है या नीचे रहता है? कहाँ रहता है? पहाड़ पर रहता है। ऐसे ही भक्ति मार्ग वाले जो नेपाली है वो जन्म जन्मांतर कहाँ रहे हैं? है पहाड़ पर रहे। उनका उनका राजधानी है काठमांडू। जैसे सूर्यवंशियों के ऊपर कोई हमला करके उन्हें जीत नहीं सका, राणा प्रताप के जमाने में देखो, पृथ्वीराज के जमाने में देखो, चाहे शिवाजी के जमाने में देखो, उनको कोई जीत नहीं सका, माने हमला करके उनको कोई धराशायी नहीं बना सका। ऐसे ही जो हद के नेपाली हैं, उन हद के नेपालियों पर कभी भी विदेशियों ने कोई आक्रमण किया हिस्ट्री में नहीं किया। वो हद के नेपाली अभी विदेशियों के प्रभाव में सबसे जास्ती आ गए, दूसरे नंबर में आ गए या पहले नंबर में ज्यादा प्रभाव में आ गए? पहले नंबर में बेहद के या पहले नंबर में हद के नेपाली जो विदेशियों के प्रभाव में ज्यादा आते हैं? बेहद के पहले आते हैं और हद के नेपाली बाद में आते हैं। और
बाबा
है
बाबा जी मुझे नहीं है काशी से आपका ये शरीर छोटी तो गर्व में लेता है बोलता है, लेकिन ऐसा करने से तो परमदाम खाली होता है, कब जाना है परमदाम बाबा?
शरीर छोटा तो पूरा गर्व में गर्म धार करती है।
हाँ हाँ।
तो मैं कब स्वर में जाएंगे फिर ऐसे बोले?
मैं कब
मैंने अगर भी शरीर छोड़ दिया है अभी जाकर दूसरा माता का गर्भ में जाकर आत्मा प्रवेश कर दिया
कब?
उसके बाद में उनको परमधाम कब जाएगा वो पूछ रहे हैं।
परमधाम कब जाएगा? परमधाम तब जाएगा जब आत्मा कंप्लीट बनेगी बिंदु। तब तक क्या करना है? तब तक जब तक देवान में जीना है तब तक ज्ञान जल पीना है। संपन्न आत्मा बन गए, देवान छोड़ दिया तो ज्ञान पीने की दरकार है नहीं? फिर तो भागो परम नाम।
मुरली में आया कि अभी शरीर छोड़ देंगे जाकर कोई माता का गर्भ में जन्म ले लेगा।
अभी शरीर छोड़ देंगे तो क्या सुसाइड करेंगे?
परम नाम कब जाएंगे? कब जाएंगे वो बात पूछ।
अभी सुसाइड कर लो परम नाम पहुंच जाएंगे। अभी जीव घात करने से मर जाएंगे शरीर से तो परम नाम पहुंच जाएंगे। अरे जन्म मरण अपने हाथ में है या ड्रामा के हाथ में या भगवान के हाथ में देना है? है ड्रामा के हाथ में देना। ऐसी बात क्यों करते हम अभी शरीर छोड़ दे, अभी आसमान फट जाए, अभी जमीन फट जाए, अभी अभी विनाश हो जाए। और
चंद्र गीता मार्शाला और पोखरा एक घंटा की दूरी है, माना लगभग डेढ़ घंटा लगता है। तो यहाँ से पोखरा से माता और भाई को तो सेवा के लिए बुलाते हैं चंद्र में। चंद्र में बुलाना पड़ता है ना सेवा के लिए? तो यहाँ की माता और भाइयों के लिए गीता पाठशाला में खाना की व्यवस्था कर सकते हैं?
बुलाएंगे तो खाना नहीं देंगे है? पूछने क्या बात इसमें? कोई किसी को बुलाता है निमंत्रण देता है तो उसका खाना पीना बंद कर देगा है? काय की परमिशन नहीं मिला? सेवा करने के लिए कोई मना कर सकता है क्या? अरे सर्विस करने के लिए मना है या डिस सर्विस करने के लिए मना है? डिस सर्विस करने के लिए मना है। हाँ और हाँ
अंशु बाबा की गलानी, अंशु बाबा के रास्ते की गलानी करेंगे करेंगे और अंशु बाबा के पता से लेंगे और तो गलन करते रहेंगे।
अरे बिना पढ़े ही पूछ लिया करो ना, नेपाली में पूछो, हिंदी मत पढ़ो। समझा?
बाबा की गलानी करने वाले, बाबा की प्रत्यक्षता होने की गलानी करने वाले गलानी करते रहेंगे।
पहले तो ये समझो बाबा की प्रत्यक्षता कब से शुरू होगी? है 17 से। और कितने लोग बाबा की प्रत्यक्षता को स्वीकार करेंगे पहले? अरे पहले पहले बाबा की प्रत्यक्षता को कितने लोग स्वीकार करेंगे? 8। तो 8 के अलावा जितने होंगे वो सब ग्लानी करने वाले होंगे या महिमा करने वाले होंगे जिन्होंने पहचाना ही नहीं है? फिर हाँ
करते रहेंगे,
कब तक करते रहेंगे? जब तक पूरी राजधानी स्थापन न हो जाए। 8 की राजधानी पूरी कही जाएगी या 4.5 लाख की राजधानी पूरी कही जाएगी? 4.5 लाख की राजधानी पूरी कही जाएगी। उनमें 4.5 लाख आत्माएं और प्रवेश करके काम करेंगी राधा कृष्ण जैसी, तो टोटल 9 लाख हो गए।
ये तो सन 36 तक हो रहा है।
हाँ तो सन 36 तक दुनिया की 500-700 करोड़वी जो आत्माएं होंगी वो भगवान को न पहचानने के कारण ग्लानी नहीं करेंगी?
करेंगी, लेकिन तो 36 तक तो पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी।
राजधानी तो पहले ही तैयार हो जाएगी। एक राजधानी तैयार हो जाएगी कि दुनिया में जितने जितने भी धर्म हैं सबकी राजधानी तैयार हो जाएगी।
हम एक ही राजधानी तैयार हो जाएगी,
तो वो एक राजधानी से दुनिया की जो राजधानियां हैं और उनके राजनेताएं हैं, धर्म नेताएं हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली हैं दुनिया में, वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे?
हाँ, लड़ाई तो लड़ेंगे बाबा। तो 36
तो लड़ाई लड़ेंगे तो ग्लानी करेंगे।
हाँ, ग्लानी तो करेंगे। 36 तो विनाश खत्म हो जाएगा कि विनाश अभी भी रह जाएगा? ये
माना तुम्हें विश्वास ही नहीं है इसलिए पूछ रहे हो। क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हें विश्वास है कि 100 साल का संगम युग है, दूसरे धर्म पिताएं भी आए हैं 100 साल के अंदर अपना काम करके चले गए, तो शिव बाबा भी अपनी स्थापना और विनाश का काम 100 साल के अंदर कर देते हैं।
विश्व का राजधानी दिल्ली बनेगा या माउंट आबू बनेगा?
माउंट आबू तपस्या स्थली है, आत्मिक स्थिति को ही तपस्या कहा जाता है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के तपस्या करने की स्थिति है, स्थली है या राजाई की स्थली है? फिर सारी दुनिया के धर्म वालों के लिए कौन सा ऐसा शहर है जब वहाँ जहाँ सभी धर्म वालों ने राजाई की है? है दिल्ली है। तो दिल्ली रावण संप्रदाय की भी राजधानी और दिल्ली राम संप्रदाय की भी राजधानी, दिल्ली स्वर्ग की भी राजधानी, दिल्ली नरक की भी राजधानी। दिल्ली में जितना भयंकर विनाश होता है इतना दुनिया के और किसी शहर में खून खराबा नहीं होता है। जितने धर्म वाले ज्यादा से ज्यादा तादाद में दिल्ली में पल रहे हैं, इतना ज्यादा तादाद में धर्म के लोग दुनिया के किसी देश में किसी शहर में नहीं पल रहे हैं। तो बड़ा युद्ध कहाँ होगा? दिल्ली में। उसकी यादगार दिल्ली के पास का कुरुक्षेत्र का मैदान है, आज भी यादगार है। दिल्ली कब्रिस्तान और दिल्ली परिस्तान, बड़े से बड़ा कब्रिस्तान भी दिल्ली बनती है और बड़े से बड़ा प्रस्थान भी दिल्ली बनती है।
चार पांच महीने पहले हस्की भारत ने हस्की नेपाल ने अघोषित नाका लगाया था, तो बेहद के भारत ने बेहद के नेपाल में कौन सी नाका लगाया था?
क्या क्या क्या
नेपाल में जो पेट्रोल डीजल बंद किया था नहीं, ऐतिहासिक
क्या बन रहा था
नाका नाका लगाया था।
ये नाका क्या होता है?
बॉर्डर से कुछ भी सामान आने के लिए बनाए
किया था
भारत से, कुछ भी लेना देना बंद कर दिया था।
मैंने सामान कर दिया था, मैंने आने के लिए सब बंद कर
दिया।
हाँ
आपको पता है कि एडवांस में बेहद के नेपाली है, है या नहीं है? और बेहद के नेपाली जो राम संप्रदाय है असली, वो राम संप्रदाय वालों ने रावण की नगरी लंका में आने जाने के लिए पुल बनाया था। बनाया था कि नहीं है? उस पुल से लाना ले जाना आना और जाना होता ही रहता था। ऐसे ही हद के नेपालियों में और हद के भारतवासियों में आना जाना हो रहा था कि नहीं? पहले सामान आता था और जाता था। बाद में देखा कि ये तो मदेशियों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। कहाँ? हद के नेपाल में, तो बंद कर दिया। ऐसे ही जो बेहद का नेपाल है उसमें जितना भी ज्ञान धन तैयार होता है वो सारे का सारा ज्ञान धन डीवीडी के द्वारा, सीडी के द्वारा, कैसेटों के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा रावण की लंका में पहुंच रहा है कि नहीं? तो वो आना जाना थोड़े समय के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। हमें वो बातें नहीं सुनाना, वो बातें सुनते ही हमारा माथा खराब हो जाता है, हमको अच्छा नहीं लगता।
बाबा वो तो ज्ञान की बात नहीं है।
कौन सी?
ये नाका बंदी और तो ज्ञान की बात नहीं है,
वो हद की बातें हैं।
हद की बात है
और वो बेहद की बात है, ज्ञान की बात, ज्ञान धन की बात। ये दुनियावी धन की बात है, दुनियावी धन का आना बंद करा दिया।
यहाँ पर बेहद का बात होना चाहिए।
हाँ जी, यहाँ जहाँ बाप है वहाँ बेहद के ज्ञान धन की बात है। हाँ, बेहद की जो ग्लानी की बातें हैं वो हमें नहीं सुनना है, बेहद के नेपालियों को।
वो बातें करना चाहिए।
हाँ, बाबा ने कहा है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई, तो वो जितनी भी बातें सुनाते हैं बीके वाले वो सब ग्लानी का इंजेक्शन देते हैं, ग्लानी की बातें सुनाते हैं या ज्ञानी की बातें सुनाते हैं? है? ग्लानी की बातें सुनाते हैं। तो ताकीद कर दिया गया, कुछ नहीं लेना है। और है, लेकिन बाबा का क्या कहना है? बाबा का कहना है सारे विश्व का कल्याण करना है या सिर्फ एडवांस में जो चल रहे हैं उन्हीं का कल्याण करना है? है? हाँ, तो जो असली नेपाली है वो तो यही कहेंगे कि ज्ञान धन का लेना देना बंद नहीं करना है, इस डर से कि कोई हमें ग्लानी की बात सुनाएगा तो हम प्रभावित हो जाएंगे। प्रभावित होना माना प्रजा। तो ग्लानी की बातें एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। हियर नोइविल, टाक नोइविल। हमें झगड़ा करना ही नहीं है। फिर उसी ढर्रे पे आ गए। अभी नाका है नहीं नाका। अरे हमें तो हमारा बाप क्या करता है, हमारा बाप सारी दुनिया कहती है बाप सर्वव्यापी है, सब ग्लानी करती है ना सारी दुनिया, तो सारी दुनिया को आकर के गति सदगति देता है, सदगति करता है या नहीं करता है? करता है नहीं करता है? करता है। तो हमारा क्या काम है? हमारा भी काम है कोई चाहे हमारी ग्लानी करे कुछ भी करे, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। और
बाबा,
हाँ
बाबा ने बोला
है बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, बाप बच्चे को प्रत्यक्ष करेंगे तो
फादर शोज सन्स और सन शोज फादर। बाप बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं संसार में नंबर वार करते। तो ज्यादा पावरफुल कौन है? बच्चे ज्यादा पावरफुल। सब शक्तिवान कौन है? बाप सब शक्तिवान है। तो बाप बच्चों को पहले प्रत्यक्ष करते हैं संसार में, बेसिक वाले पहले हैं या एडवांस वाले पहले है? पहले पार्ट कौन बजाते हैं? बेसिक वाले। तो बेसिक वालों को संसार में प्रत्यक्ष किया है या नहीं किया? चाहे माताएं हो चाहे कन्याएं हो चाहे भाई हो, देश विदेश में एरोप्लेन में घूम घूम करके संसार के सामने प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना। तो बेसिक वालों में जो हुआ वो तो है आधार मूर्त जड़ें, लेकिन जड़ें ज्यादा पावरफुल होती है या बीज ज्यादा पावरफुल होता है? ये बीज रूप आत्मा है, एडवांस की आत्मा। इनको भी आगे चल करके बाप प्रत्यक्ष करेगा संसार के सामने। और ये 108 मण के जो रुद्रमाला के चुने हुए राजाई किस्म की आत्माएं हैं, वो सारे संसार को अपनी मुट्ठी में ले लेंगी। तो बच्चे पहले प्रत्यक्ष होंगे या बाप संसार के सामने पहले प्रत्यक्ष होगा?
बाप पहले।
बच्चों को बाप पहले प्रत्यक्ष कर देता है, बाद में 500-700 करोड़ के बीच सारी दुनिया के बीच में बाप प्रत्यक्ष होगा कि वो भगवान बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है। नास्तिक भी मानेंगे जब उनके सर के ऊपर काल मंडराएगा, एटम बम फटेंगे चारों तरफ शहरों शहरों में, तो जो एटम बम बनाने वाले हैं और छोड़ने वाले हैं वो डरेंगे नहीं कि आज हम हमला कर रहे हैं तो कल कोई दूसरा भी हमारे ऊपर हमला कर देगा है? डरेंगे। ऐसे नास्तिक भी जब अपने सर के ऊपर पड़ेगी तो भगवान बाप को गॉड फादर को मानेंगे, मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, उनके सामने भी बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो पहले सर्वशक्तिवान बाप अपने बच्चों को माला के मणकों को संसार के सामने प्रत्यक्ष करता है, बाद में वो माला के मणके सारे संसार के सामने संदेश फैला करके बाप भगवान को प्रत्यक्ष करते हैं। तो गायन है फादर शोज सन्स और सन शोज फादर। और
राज करेगी खालसा,
राज करेगा खालसा।
तो बड़ी माँ के लिए है या छोटी माँ के लिए?
छोटी माँ लक्ष्मी का पार्ट है या जगत अम्बा का पार्ट है?
लक्ष्मी
स्वर्ग में राज्य करेगी, नई राजधानी में राज्य करेगी, या नर की दुनिया में 500 करोड़ में राज्य करेगी? तो फिर
बाबा फिर रुद्र महाराज की मरकों को तो वहाँ तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा ना?
कहाँ?
हाँ तो बड़ी माँ जाना नहीं पड़ेगा, राज करेगी, भाषण कहाँ से करेगी?
जो बड़ी माँ है वो ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी अम्मा है या नहीं है? तो उनमें मिक्स होकर के रहेगी या नहीं रहेगी? है तो जब उनमें मिक्स होकर के रहेगी तो पहले बड़ी माँ ब्रह्मा कुमारियों में मिलेगी कि दूसरे पहले मिलेंगे? वो मिलेगी, ब्रह्मा की गोद में सब धर्म वाले पलते हैं, सारी दुनिया ब्रह्मा से पैदा होती है। तो ब्रह्मा की गोद में पलने वालों में जिस जिस धर्म के हैं उस धर्म के मुखिया पहले ब्रह्मा कुमारों में जाके मिलेंगे। माना ब्रह्मा कुमारों में भी, ब्रह्मा की गोद में खेलने वालों के बीच में भी अलग अलग धर्म वालों का ग्रुप है। जो झाड़ के नीचे जड़ें दिखाई गई है आधार मूर्त, वो एक धर्म की है या अनेक धर्मों की है? अनेक धर्मों की जड़ें हैं। वो आधार मूर्त ब्रह्मा की गोद में खेले हैं, उनके फॉलोअर्स भी खेले हैं, जो बीके के रूप में अभी कहे जाते हैं। संसार में बहुत फैले हुए हैं। एडवांस वाले ज्यादा फैले हुए हैं या बीके ज्यादा फैले हुए हैं दुनिया के धर्मों में? बीके ज्यादा फैले हुए हैं। तो जो दुनिया के धर्म के नेताएं हैं और राजनेताएं भी हैं, वो पहले पहले ब्रह्मा कुमारियों में जाके मिलेंगे अपने अपने ग्रुप में। माना बौद्धी बौद्धियों में मिल जाएंगे, क्रिश्चियन क्रिश्चियंस में मिल जाएंगे और सन्यासी सन्यासियों में मिल जाएंगे। जो बाबा ने बोला ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी, बोला कि नहीं? तो ब्रह्मा कुमारी में सन्यासी है कि नहीं है? है। तो जो ब्रह्मा कुमारियों में सन्यासी हैं, लक्ष्मी जैसे पक्के सन्यासी हैं या कच्चे? पक्के सन्यासी हैं। वो लक्ष्मी जब निकलेगी तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो वो लक्ष्मी जो है पूरी पूरी ब्रह्मा कुमारियों में अभी मिल गई कि नहीं मिल गई? मिल गई
बाबा।
अरे पूरी बात कर लेने दो, जाओ। जिनको इंटरेस्ट आ रहा है सो बैठे, बाकी छुट्टी।
बेसिक और एडवांस।
अरे भाई
बेसिक और एडवांस क्यों हो गए?
अलग क्यों हो गए? जो ज्ञानी और अज्ञानी है वो अलग होके रहेंगे कि एक होके रहेंगे? ज्ञानी देवता बनेंगे या अज्ञानी देवता बनेंगे? हैं? ज्ञानी देवता बनेंगे तो स्वर्ग में अलग क्यों रहेंगे? जो दुनिया के अज्ञानी है 500-700 करोड़, वो क्यों नहीं स्वर्ग में रहते? अरे अरे एक बात का जवाब समझ में आ गया? आ गया? हाँ आ गया। अब आगे पूछो। है लड़ाई लड़ लो दोनों पहले।
बाबा ये हम साधुओं को पैसे दान देते हैं ना, और वो तो और के लेते और पीछे रात में
शराब पीते
पीते, वो हमको पाप चढ़ेगा या नहीं? हैं? हमको पाप चढ़ेगा या नहीं?
है, है सबने बोलो। हैं
साधु जब आता है पीछे मांगने के लिए, हम उसको दान दे देते हैं, और शाम को दादा को दारू पी लेता
है। हाँ?
उसमें हम लोग का कुछ मैंने कल्याण पाप भाग ही नहीं है।
फर्क हो परख के दान देना चाहिए या बिना परख के किसी को भी देना चाहिए? परख के दान दो, कौन सच्चा है कौन झूठा है।
बाबा ये योग आध्यात्मिक चिंतन है या विज्ञान है?
आदि आत्मिक, दो शब्दों को मिला के बनाए आध्यात्मिक। आदि माने अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर। किसके अंदर? आत्मा के अंदर। तो जो आत्मा के अंदर की बात बताता है वो है आध्यात्मिक। आत्मा के अंदर की बात परमपिता परमात्मा ही बताएगा या कोई दूसरा बताएगा? आत्मा के अंदर की बात परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई दूसरा बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? कोई कारण है?
जानकारी नहीं है।
क्यों नहीं जानकारी है? कोई कारण है या नहीं? हाँ, जो भगवान है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण भगवान जो है वो तीनों कालों को जानता है, और मनुष्य आत्मा जन्म मरण के चक्र में आ जाती है इसलिए सब भूल जाती है। मृत्यु एक ऐसा एक्सीडेंट है बड़ा कि जैसे किसी का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, उसका खोपड़ा डॉक्टर लोग अलग करते हैं फाड़ते हैं, और यदा कदा वो जिंदा हो जाता है तो पिछली सारी बातें भूल जाता है। ऐसे ही मृत्यु एक बड़ा एक्सीडेंट है जो आत्मा सब कुछ भूल जाती है। कोई कोई आत्माएं होती हैं जिनको बचपन में अपना पूर्व जन्म याद आता रहता है, बाकी सब नहीं। तो भगवान एक ऐसी आत्मा है तुरिया जो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आती, उसे सब कुछ पता है। इसलिए एक भगवान ही सबका सदगति दाता है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर की बात को जानता है कि कौन कौन सी आत्माएं क्या क्या जन्म जन्मांतर पार्ट बजाने वाली है। अधि आत्मिक, अधि माने अंदर, आत्मा के अंदर की सारी बातों को बताने वाला एक भगवान है, वो है विज्ञान सच्चा। वि माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान। आत्मा का ज्ञान विशेष ज्ञान है या शरीर का ज्ञान विशेष ज्ञान है? और ये आज के वैज्ञानिक पांच तत्वों का बने हुए शरीर का ज्यादा ज्ञान रखते हैं, पांच तत्वों का ज्यादा ज्ञान रखते हैं कि आत्मा का ज्ञान रखते हैं? है फिर आत्मा का ज्ञान रखते हैं वैज्ञानिक।
ये भूत प्रेत जो होता है बोलता है भूत प्रेत है, बोलता है भूत प्रेत है, भूत प्रेत,
भूत प्रेत है।
हाँ, भूत प्रेत।
कैसे आत्मा भूत प्रेत बन जाती है?
जो अकाले मौत में शरीर छोड़ती है या जीवहत्या आत्महत्या सुइसाइड करके शरीर छोड़ती है या दूसरों की हत्या करके शरीर छोड़ती है, हत्या करने वाली आत्माएं, वो भूत प्रेत बनते हैं। उनको स्थूल शरीर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता कि अगर उनको लंबे समय तक स्थूल शरीर मिलता रहेगा तो और हत्याएं करेंगे, इसलिए उनके ज्यादा पाप न बने इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, भूत प्रेत का शरीर मिलता है। तो ये भूत प्रेत का शरीर किनको मिलता है? उन आत्माओं को मिलता है जो पक्की ज्ञानी तु आत्मा भगवान के पक्के बच्चे नहीं बनते। जो सूर्यवंशी है 4.5 लाख वो पक्के हुए भगवान के बच्चे हैं। उन्होंने श्रीमत को फॉलो किया है, भगवान की आज्ञाओं को फॉलो किया है, आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार, ईमानदार बनते हैं। बाकी तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान पूरा लेते ही नहीं। तो जो पूरा ज्ञान नहीं लेते, कर्म अकर्म की विकर्म की गति नहीं जानते, पाप क्या है पुण्य क्या है, वो पाप ज्यादा करेंगे या पुण्य करेंगे? पाप ज्यादा करते हैं। तो ज्यादा पाप करने के कारण ड्रामा में ऐसा नियम है कि जो बहुत पाप करते हैं उनको अचानक शरीर छोड़ना पड़ता है और भूत प्रेत बनना पड़ता है, जैसे ब्रह्मा बाबा। नहीं समझ आया?
नुकसान ही करता है, नुकसान ही करते
नुकसान करता है,
भूत प्रेत
करता है।
जो जो जन्म जन्मांतर पाप ही करता रहा होगा, उसके पाप करने की जो संस्कार हैं वो आत्मा में भरे हुए हैं या नहीं है? अरे उसके पाप करने के संस्कार हैं या पुण्य करने के संस्कार? पाप ही करने की, ब्रह्मा की सोल है, ब्रह्मा की सोल राम वाली सोल में प्रवेश करती है। तो ज्यादा ज्ञानी कौन है और अज्ञानी कौन सी आत्मा है? अज्ञानी ब्रह्मा की सोल है, समझे बैठिए। शिवो हम ही गीता के साकार भगवान है, हमारे संग के रंग से सब सुधरेंगे, क्योंकि हमारा भगवान का पार्ट है। तो वो आत्मा को अपना शरीर तो है ही नहीं, तो क्या करती है? किसको कब्जे में करती है? अरे भूत प्रेत किसी को कब्जे में करते हैं कि नहीं? तो किसको कब्जे में करती है? हैं? नहीं, वो तो अबला का चोला है, है? राम वाली आत्मा में शरीर प्रवेश करती है। राम वाली आत्मा में जो बैलबाजी का काम है वो राम वाली आत्मा का जन्म जन्मांतर का संस्कार है, दुख देने का, जानवरियत का काम करने का, या प्रवेश करने वाली आत्मा का काम है?
बाबा
राम, अरे बाबा क्या है पढ़ते राम वाली आत्मा जन्म जन्मांतर है, द्वापर युग कलयुग में भी युद्धों में विजय का सुख भोगती है, आत्मिक सुख भोगती है, या महलों में रहकर रानियों की तरह देह का सुख भोगती है? है आत्मिक सुख भोगती है, उसमें संगम युग के संस्कार पड़े हुए हैं, सारा जीवन संघर्ष करने के, काहे के साथ? असत्य के साथ। किस सत्य के साथ? असत्य के साथ युद्ध करती है। तो वहां भी द्वापर कलयुग में वो आत्मा जन्म जन्मांतर है, जो असुर हैं उनके साथ युद्ध करती है और विजय पाती रहती है। वो है ही नारायण वाली आत्मा, जिसके लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है नारायण की कभी हार ही नहीं हुई। जितने भी युद्ध हुए उन सभी युद्धों में विश्व में उसने जीत ही जीत पाई, इसलिए विश्वपति बनती है। तो आत्मिक सुख लेना बड़ा है या देह का सुख लेना बड़ा है? है आत्मिक सुख लेना। तो दोनों आत्माओं के बीच में राम वाली आत्मा और सचिव की कृष्ण वाली आत्मा, दोनों के बीच में आत्मिक सुख लेने वाला कौन है और देह का सुख लेने वाला कौन है? है
लक्ष्मी नारायण आत्मिक सुख,
वो आत्मिक सुख लेने वाली आत्मा है। लेकिन जो नारायण वाली आत्मा राम वाली आत्मा है उसमें बैल प्रवेश करता है या बैल पर शंकर सवार है अभी अभी क्या है, है? बैल पर
बैल पर
शंकर पर बैल
बैल शंकर पर सवार है और बैल किसकी आत्मा है ब्रह्मा की आत्मा है। शिव के मंदिर में देखो शिव के मंदिर में बैल को कहां बैठा हुआ दिखाया गया उसका मुख किस तरफ है, है?
सामने
क्या रखा है? है नाली रखी हुई है उस तरफ मुख है कहां की यादगार है उसकी मन बुद्धि का जो मुख है वो किस तरफ है अभी अरे नाली की तरफ है या नहीं है नाली की तरफ है किसके शरीर को जा रहा है किसके शरीर के द्वारा रामवाली रामवाली आत्मा के द्वारा तो बैल अभी शंकर पर सवार है या शंकर बैल पर सवार है शंकर बैल पर सवार है अभी बैल शंकर पर सवार है ऐसा भी टाइम आएगा याद की ताकत से याद की ताकत सबसे बड़ी ताकत है कि नहीं तो राम वाली आत्मा याद में ज्यादा तीखी है या कृष्ण वाली आत्मा याद में ज्यादा तीखी है राम वाली आत्मा शंकर को सदैव याद में बैठा हुआ दिखाते हैं तो जो राम वाली आत्मा है याद में ज्यादा तीखी है आज नहीं तो कल विजय किसकी होनी है, है? बाबा भी कहते हैं अंत में तुम बच्चों की विजय निश्चित है अभी माया अगर हार खिलाती है तो कोई बड़ी बात नहीं लेकिन अंत में माया की विजय होगी या तुम्हारी विजय होगी तुम बच्चों की विजय होगी तुम बच्चों में अब्बल नंबर कौन राम वाली आत्मा शंकर वाली आत्मा तो शंकर वाली आत्मा अभी वर्तमान समय पुरुषार्थी है या संपन्न है पुरुषार्थी है पुरुषार्थी कभी नीचे भी गुरता है कभी ऊपर भी चढ़ता है हमें उन राहों पर चलना है जहां चढ़ना और संभल उतरना संभलना है ना जहां गिरना और संभलना है हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है तो बाबा की याद में हम सदैव संभलते हैं साइकिल पर चढ़ने वाला बार बार गिरता है बार बार चढ़ जाता है तो संभलता है या गिर जाता है संभलता है उसे हारा हुआ कहेंगे कहेंगे नहीं कहेंगे हिम्मत है बच्चे मदद है बाप जितनी बच्चे हिम्मत करेंगे तो बाप उतनी मदद करने के लिए बांधा हुआ है इसलिए कहेंगे कि बैल अभी के अनुसार शंकर पर सवार है फिर ऐसा भी टाइम आएगा याद करते करते कि शंकर है बैल पर सवार हो जाएगा वो संपूर्ण स्टेज दिखाई गई इसलिए जो चित्र बनाए जाते हैं वो संपूर्णता के बनाए जाते हैं या अपूर्णता के बनाए जाते हैं तो शंकर की सवारी का जो चित्र है वो कौन दिखाया गया बैल दिखाया गया संपूर्णता की स्टेज में या अपूर्णता की स्टेज में संपूर्णता की स्टेज में बैल शंकर की सवारी दिखाया गया तो क्या हिसाब हुआ बैल पर शंकर सवार होता है और शंकर पर शिव सवार होता है इसलिए देखा होगा कि बैल के कंधे पर शिवलिंग बना होता है या गाय के कंधे पर शिवलिंग बना होता है? बैल पर शिव सवार हो जाता है, तो क्या ज्योतिबिंदु सवार हो जाता है जानवर के ऊपर? शिव जानवर पर प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा? मनुष्य में प्रवेश करेगा। तो शिव शंकर रूपी मनुष्य पर सवार होता है, और शंकर दुनिया के जितने भी जानवर हैं, चाहे मनुष्य रूप में हो चाहे जानवरों रूप में हो, उन सब के ऊपर सवार होता है। ओम शांति।